अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के तृतीय प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। तृतीय प्रकरण में आचार्य पिपलाद जी कौशल्य के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। कौशल्य के कई प्रश्नों में से दो प्रश्नों का उत्तर हो गया, तीसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। पहला प्रश्न था कि प्राण किससे उत्पन्न होता है, उसका उत्तर बताया प्राण परमात्मा से उत्पन्न होता है। आत्मन एष प्राण जायते इस वाक्य से, और इस शरीर में उसका प्रवेश किस निमित्त से होता है, ये जो द्वितीय प्रश्न था इसका उत्तर दिया मनोकृतेन आयाति अस्मिन् शरीरे इस वाक्य से, और मनोकृत शब्द का अर्थ है सकाम कर्म उपासनाएं, और उन्हीं सकाम कर्म तथा चिंतन से शरीर धारण कर लेता है प्राण। शरीर भोगायतन है, प्राण भोगता है, उसके भोग की उपपत्ति के लिए उसे शरीर धारण करना आवश्यक है। शरीर 84 लाख प्रकार के हैं, तो वह अपने मर्जी से कोई भी शरीर धारण नहीं कर सकता। शरीर धारण करने में निमित्त बनता है उसी के द्वारा किया गया पूर्व कर्म जो फलोन्मुख हुआ है, उसे यहां पर मनोकृतेन शब्द से कहा, और उसी कर्मवशात शरीर धारण यह प्राण कर लेता है। और इस शरीर में प्रविष्ट हुआ प्राण कैसे अपने आप को विभक्त करके अलग अलग स्थानों में अवस्थित होता है, तथा गौण प्राण शब्दित चक्षुरादि को भी शरीरस्थ अलग अलग अंगों में स्थापित करता है, ये तीसरा प्रश्न है। इस तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है आचार्य पिपलाद जी के द्वारा। इसके लिए एक दृष्टांत बताया गया चतुर्थ कंडिका में कि जैसे राजा अपने अधिकारियों को अलग अलग राज्य के हिस्से में भाग में स्थापित करता है कि इस स्थान पे रह करके आप यहां की व्यवस्था देखना, आप यहां की व्यवस्था देखना, आप ये विभाग संभालना, ऐसे ही यह प्राण भी चक्षुरादि इंद्रियों को तथा स्वयं अपने किए हुए जो अलग प्रभेद हैं उनको अलग अलग स्थानों में स्थापित करता है। इसे इस राजा के दृष्टांत से समझाया गया। चक्षुरादि को भी वह इस शरीर में अलग अलग गोलकों में स्थापित करता है, और अपने जो 5 विभाग हैं उन्हें भी अलग अलग गोलकों में स्थापित करता है। इसे समझाया जा रहा है तो चक्षुरादि का गोलक तो सर्वप्रसिद्ध है, इसलिए चक्षुरादि गौण इंद्रियों के अलग अलग स्थानों को श्रुति में नहीं बताया गया। जो प्रसिद्ध चक्षुरादि इंद्रियों के स्थान हैं उन्हीं स्थानों में यह मुख्य प्राण ही गौण प्राण रूप चक्षुरादि को स्थापित करता है। जो ये चर्म चक्षु दिख रहा है उसमें रूप ग्राहक नेत्र इंद्रिय को स्थापित करता है। कर्ण सस्कुली रूप जो स्थान दिख रहा है उसमें श्रोत्र इंद्रिय को स्थापित करता है। घ्राण इंद्रिय को स्थापित करता है नासिका में, त्वचा में स्थापित करता है। त्वग इंद्रिय को जिह्वा में स्थापित करता है रसन इंद्रिय को। ऐसे कर्म इंद्रियों को भी अपने अपने अलग अलग गोलकों में स्थापित करता है। कर्म इंद्रियों में वाग नाम की इंद्रिय का गोलक है जिह्वा, उसमें स्थापित करता है। तो हस्त इंद्रिय का गोलक है हाथ, पैर पाद नाम की इंद्रिय का गोलक है, पैरों में स्थापित करता है पाद इंद्रिय नामक गोलक को, इंद्रियों को। और पायु तथा उपस्थ में स्थापित करता है पायु और उपस्थ नामक जो इंद्रियां हैं उन्हें। और अपने जो पांच विभाग किए हैं उन पांच विभागों के स्थान अप्रसिद्ध है, इसलिए श्रुति बता रही है पंचम मंत्र में। तो प्राण की पांच वृत्तियों में एक वृत्ति है अपान नाम की, एक विभाग है, उसे पायु और उपस्थ में स्थापित करता है, उन गोलकों में स्थापित करता है। और उस अपान वृत्ति रूप से पायु उपस्थ में स्थापित हुआ जो प्राण, वह क्या करता है वहां पर अपान वृत्ति यानी अपान रूप विभाग से, तो हमारे द्वारा खाए गए अन्न का जो स्थूल भाग मल बना है उसे विसर्जित करता है। विसर्जित करने में अनुग्रह करता है पायु इंद्रिय का, और पीत जल के स्थूल भाग से जो मूत्र बना है उसे विसर्जित करने के लिए उपस्थ इंद्रिय का अनुग्रह करता है। ये बात बताई गई पायुपस्थे अपानम, इस वाक्य से यानी पायु और उपस्थ में अपने अपान नामक एक भेद को स्थापित करके उन इंद्रियों का वो अनुग्रह करता है उनके कार्य संपादन में। और प्राण स्वयं भी एक है पांच वृत्तियों में, वह मुख्य है, वो राजास्थानीय है। वह चक्षु और श्रोत्र में रहता है यानी नेत्र इंद्रिय का गोलक तथा श्रोत्र इंद्रिय का जो गोलक है वहीं पर रहता है। और मुख नाशिका के द्वारा बाहर निर्गमन करता है, फिर अंदर आता है, गमनागमन करता है। और चक्षु इंद्रिय पर तथा श्रोत्र इंद्रिय पर अनुग्रह करता है शब्द ग्रहण के लिए तथा रूप ग्रहण के लिए। ये कहा गया चक्षु श्रोत्रे मुखनाशिकाभ्याम प्राण स्वयं प्रातिष्ठते। तो चक्षु और श्रोत्र में स्वयं प्राण रहता है राजास्थानीय। और ये जो प्राण का स्थान और अपान का स्थान बताया, इनके बीच में नाभि है, ये नाभि स्थान है समान वायु का। समान भी एक प्राण का ही भेद है, उसे कहा जा रहा है कि मध्येतु समानः प्रातिष्ठते। क्रिया को इधर भी ले आना कि मध्य यानी बीच में, तो बीच में ये सुनते ही आकांक्षा होती है किसके बीच में, किसके मध्य में। तो प्राण और अपान का जो स्थान बताया उन दो स्थानों के मध्य में, तो अपान का स्थान पायुपस्थ और प्राण का स्थान चक्षु श्रोत्र, इनका मध्य है वो कौन है, तो वो है नाभि स्थान। इसलिए मध्य शब्द से लेना होगा नाभि को, इसलिए मध्य यानी नाभ्याम वो समान प्रातिष्ठते, समान को वो स्थापित करता अपने समान नाम की वृत्ति को, समान रूप से रहता है और वहां रह करके नाभि देश में रह करके यह समान नाम का जो प्राण का एक वृत्ति विशेष है क्या करता है, तो कहते हैं हमारे द्वारा भुक्त जो अन्न तथा पीत जो जल है इससे पाचन क्रिया के माध्यम से जो चार तीन विभागों में विभक्त हुआ, तो इन्हें जहां पहुंचाना है वहां पहुंचाता है। तो जो मध्यम भाग है अन्न रस बना उसे हृदय देश में पहुंचाता है और हृदय देश में ही सूक्ष्म भाग को भी पहुंचाता है। इसलिए ये कहते हैं कि येष ही एतद् हुतम अन्नम समम नयति। येष यानी ये प्राण का जो एक भेद बताया गया समान नाम का, यह समान नाम का प्राण का भेद ही क्या करता है कि एतद् हुतम अन्नम जो आपके द्वारा हूत अन्न है, हूत यानी आहूत यानी प्रक्षिप्त, कहां पर प्रक्षिप्त, तो हवन किया जाता है जहां कहीं हवी का प्रक्षेप नहीं किया जाता, जो हवन सामग्री होती है उस हवन सामग्री का प्रक्षेप किया जाता है आह्वनीय अग्नि में। यहां कल्पना की जा रही है कि आप जो भोजन करते हो यह भोजन केवल पेट भरने की क्रिया मात्र नहीं है अपितु यह यज्ञ कर्म है, इसे यज्ञ कहा जाता है और यज्ञ में होता है एक आह्वनीय अग्नि, फिर हवन सामग्री, हवनकर्ता यजमान और हवन सामग्री का हवन होता है उसका नाम है प्रक्षेप आह्वनीय अग्नि में, और उन हवन द्रव्य से अग्नि प्रज्वलित होकर के उससे निकलती है ज्वालाएं अलग अलग, तो उनकी यहां पर यही कल्पना की जा रही है भोजन में। तो भोजन एक प्रकार से रोज जो किया जाता है वो रोज का हवन के तरह हवन है, अग्निहोत्र है। इसलिए यहां पर आप जो थाली में परोसा गया अन्न है उसे उठा करके मुख में डाल रहे हो वो ऐसे ही अंदर नहीं कर रहा है, वो हवन कर रहा है, प्रक्षेप हो रहा है आह्वनीय अग्नि में। वो आह्वनीय अग्नि कौन है, तो पेट के अंदर जो उदरीय अग्नि है जाठराग्नि, उस जाठराग्नि को ही कल्पना करना कि ये यज्ञ का अग्नि है, उसे कहा जाता है आह्वनीय अग्नि। और जो हमारे थाली में परोसा गया भोजन है वो है आहुति द्रव्य, हवन सामग्री। और उसका हम प्रक्षेप कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, हवन सामग्री का उदर्य अग्नि रूपी आवनीय अग्नि में, वो है एक एक, ये नहीं कि एक ही बार में पूरी हवन सामग्री के पात्र में रखी हुई जो हवन सामग्री है उठा करके आवनीय अग्नि में नहीं डाली जाती, थोड़ा सा उसे ऐसे उठा करके डाला जाता है मंत्र के साथ, मंत्र उच्चार के साथ स्वाहा कह करके। ऐसे एक एक ग्रास जो भोजन की थाली में परोसा गया भोजन है, वह एक एक आहुति दी जा रही है, इस प्रकार की कल्पना करनी है, भावना करनी है। और कल्पना की जा रही है तो खाली हवन पात्र से उठा करके हवन सामग्री को आवनी अग्नि में नहीं डाला जाता, मंत्र भी बोला जाता है। तो प्रत्येक ग्रास के साथ यदि हम अपने इष्ट मंत्र को जपते हैं, मानस जप करते हैं उसका और मुख में डालते हैं, तो माना जाता है ये रोज का यज्ञ हो रहा है। प्रत्येक ग्रास के साथ मंत्र उच्चार किया जा रहा है, जो हमारे अपना इष्ट मंत्र है उस मंत्र से मंत्र का मानस उच्चारण और फिर एक ग्रास उठा करके मुख में डाला उस मंत्र का उच्चारण करके और अच्छी तरह से चबा करके अंदर ले गए, तो उधर ही अग्नि में पहुंचा, आवनी अग्नि में पहुंच गया, वो ये प्रक्षेप हुआ, एक आहुति पड़ी, ऐसे दूसरी तीसरी। तो जितने कवल लेते हैं, ग्रास लेते हैं, उतने बार मानस मंत्र का उच्चारण हो जाए तो सहज वो यज्ञ होता है वह, नहीं तो खाली पेट भरने की प्रक्रिया मात्र हो जाती है। जैसे बोरी में किसान जो फसल में निकला हुआ अनाज है वो भर देता है, ऐसे पेट रूपी बोरी में भर रहे हैं पका हुआ भोजन रूपी सामग्री, और इससे अदृष्ट बनता है। इस हवन से भूख की निवृत्ति तो होगी ही, तृप्ति तो आएगी ही, और पुण्य बनेगा, वो अलग से आपका एक प्लस पॉइंट रहेगा। बाकी तो जो ऐसे ही खा लेते पेट भरने के लिए, उनका भी पेट भरता है और शास्त्र ने बताई हुई प्रक्रिया से भोजन करते हैं तो उनका भी पेट भरता है, उनकी भी भूख चली जाती है, तृप्ति आ जाती है। लेकिन इनका एक पुण्य रूप अदृष्ट बनता है, वह अदृष्ट यदि आप निष्काम भाव से कर रहे हैं तो आपके चित्त को शुद्ध करेगा। इसलिए यहां पर यह कहा गया कि यद एतद हुतम अन्नम, उदर्य अग्नि में प्रक्षिप्त किया गया जो भोजन के माध्यम से अन्न है, उसे उदर्य अग्नि पचाता है। यदि अग्नि न हो जाठर अग्नि तो पचाना, हम अन्न तो खा लेते हैं लेकिन हमारे द्वारा खाए गए अन्न को पचाने का सामर्थ्य हमारे में नहीं है, उसे पचाता है सर्वोपकारपक सबके अनुग्रहकर्ता अनुग्रह मूर्ति भगवान ही, उदर्य अग्नि का रूप धारण करके। उदर्य अग्नि का जाठर अग्नि का एक नाम है वैश्वानर अग्नि भी, और 15वें अध्याय में भगवान ने कहा अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम, कि मैं ही वैश्वानर अग्नि यानी जाठर अग्नि बनकर के प्राणी मात्र के शरीर में स्थित हूं। और प्राण अपान से युक्त होकर के क्या करता हूं कि उस जाठर अग्नि रूप से प्राणियों के द्वारा खाए गए चार प्रकार के अन्न को पचाता हूं। जब अन्न पचता है और उसका मध्यम अंश स्थूल शरीर का संपोषक बनता है और सूक्ष्म अंश बन जाता है मन का संपोषक, तो जहां मन है वहां पर उस सूक्ष्म अंश को पहुंचाना होगा। और शरीर का एक अंग ही पुष्ट हो जाए, रक्त या मांस एक ही भाग में खूब बढ़ता जाए, एक हाथ में और पैर दुबले पतले होते जाए, तब भी ठीक नहीं है। शरीर संवर्धित होना है तो सब शरीर के अंगों को एक साथ संवर्धन मिलना चाहिए, संपुष्टि मिलनी चाहिए। इसलिए स्थूल शरीर के प्रत्येक भाग में यह शरीर का संपोषक भुक्त अन्न का जो मध्यम अंश है, जिसे अन्नरस कहा जाता है, पहुंचना चाहिए। और वो पहुंचेगा कहां से, तो आपके भवन में जितने कमरे हैं और उनमें जितने बाथरूम हैं, रसोई है, और जहां जहां नल के पॉइंट दिए हैं, उन सब में पानी पहुंचना चाहिए ना। वो सीधे यदि टंकी न बने और टंकी में वो सप्लाई वाला पानी न पाइप न हो, तो सीधे आपने बोरिंग में डली हुई जो मोटर है उसको शुरू कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, तो पानी बाथरूम और रसोई आदि में थोड़ी जाएगा। उसके लिए जहां से आपने सप्लाई दिया है उस टंकी को भरना होगा, और टंकी भर जाएगी और गेट वाल खुला रहेगा तो सप्लाई वाले पाइप से जहां जहां आपने उस पाइप को पहुंचाया हुआ है पानी को, वहां वहां पानी पहुंच जाता है ठीक से, और उसका उपयोग आप कर लेते हैं। नहीं तो जहां एक जगह है वहीं से भर भर करके लाना पड़ेगा। तो ऐसे ही ठीक से आपके प्रत्येक अंग में यह अन्नरस पहुंचाने के लिए भगवान ने पहले से ही कंसील फिटिंग कर रखी हुई है पाइपों की। वो है अलग अलग नाड़ियां, और उन नाड़ियों के माध्यम से अन्न रस को शरीर के तत्तद अंगों में पहुंचाने वाली, रक्त को पहुंचाने वाली, श्वास को पहुंचाने वाली सब अलग अलग लाइन है। जैसे भवन के अंदर कंसील फिटिंग होती है, पानी को पहुंचाने वाले पाइप अलग, तो बिजली की लाइन पहुंचाने वाले पाइप अलग डालते हैं, टेलीफोन के अलग डालते हैं, तो गैस पाइप अलग होता है। ऐसे इस भवन में भी भगवान ने अनेकों नाड़ियां अलग अलग कार्य करने के लिए बनाई हुई है, और उन नाड़ियों के माध्यम से अन्न रस पहुंचाने के लिए जहां टंकी से सप्लाई हो रहा वहां टंकी में पानी पहुंचाते हैं ना, ऐसे यह हृदय देश से ही सब ओर रक्त अन्न रस आदि जाता है, वहीं से फिर ये सप्लाई करने वाली अलग अलग नाड़ियां हैं वो आगे बताया जाएगा। तो इसलिए हृदय देश रूपी जो स्टोर है वहां तक इस अन्न के मध्यम तथा सूक्ष्म अंश को पहुंचाना आवश्यक है, उसे पहुंचाता है यह समान नाम का वायु। इसलिए यहां कहा गया कि एस ही एतद हुतम अन्नम समम नयति, ये जो मुख्य प्राण है, अत्याना मुख्य प्राण का एक भेद है समान नाम का, जिसका स्थान नाभि बताया गया, वह उदर्य अग्नि के द्वारा पाचन क्रिया के माध्यम से बनाया गया जो अन्न रस है उसे पहुंचाता है हृदय देश में अच्छी तरह से, और फिर वहां हृदय देश से अलग अलग नाड़ियों से अलग अलग स्थानों में यह सप्लाई होता है अन्न रस। और ये कर्ता कौन है? ये समान नाम का वायु, इसे बताया गया। और यहीं से हृदय से ही ऊपर की ओर भी ये चला जाता है अन्न रस, और आपके शीर में, और शीर कहा जाता है गर्दन के ऊपर वाला जितना भाग है वो पूरा शीर कहलाता है। शीर काट करके लाया का मतलब होता है खाली जिसमें केस है उतना भाग ही नहीं होता शीर, गर्दन के ऊपर वाला भाग उसीर कहलाता है। वो राहु का, एक राहु नाम का जो दैत्य था उसका शिरच्छेदन भगवान ने किया ना, लेकिन अमृत गया था धड़ में भी और शीर में भी तो उमर तो नहीं पाया, इसलिए राहु जो शीर है वो राहु नाम का नौ ग्रह में से एक ग्रह बना, और केतु नाम का बना उसका वो धड़। तो ये जो शीर है राहु शीर कहा जाता है, वो शीर गर्दन के ऊपर वाला जो भाग है उसे कहा जाता है शीर, और उसमें है सात अलग अलग गोलक इंद्रियों के, दो तो हैं श्रोत्र इंद्रिय के गोलक, दो कर्ण सस्कुलिया, दो हैं नेत्र इंद्रिय के गोलक चक्षु, और दो हैं घ्राण इंद्रिय के गोलक, और एक है रसन इंद्रिय का गोलक। और इन सात द्वारों से इंद्रिय अपने अपने विषय के, इंद्रिय के माध्यम से इंद्रिया ही अपने अपने विषय के ओर ले जाती हैं मन को, और फिर वहां पर बन जाता है विषयों के साथ मन का संबंध। तो माना जाता है विषयों का ज्ञान हुआ, ज्ञान है प्रकाश, प्रकाश है अग्नि का एक प्रकार से अर्ची के तरह अर्चिया, ये ज्वालाएं दीप्तियां। अग्नि भी जब प्रकट होता है तो खाली अंगारे से उतना प्रकाश नहीं होता ना, और जब जलता है और उससे ज्वालाएं निकलती हैं अलग अलग अर्चियां निकलती है तो प्रकाश ज्यादा होता है ना, ऐसे माना जाता है कि ये जो शीर्षस्थ इंद्रियों के अलग अलग सात द्वार रूप गोलक हैं, इन गोलकों के माध्यम से हो रहे हैं जो हमें ज्ञान शब्दादि विषयों के, यही इस अन्न से होने वाले वो अर्ची के तरह अर्ची है। यदि अन्न रस न बने, उदर्य अग्नि हमारे खाए हुए अन्न को पचाए न, और तो अन्न रस नहीं बनेगा, अन्न रस नहीं बनेगा तो सारी इंद्रियां भी यानी इंद्रियों के गोलक भी दुर्बल हो जाता है। दुर्बल होने से फिर जिसने महीनों से भोजन नहीं किया उसे कहें कि ये गीता है इसका पाठ करो, तो गीता के श्लोक भी ठीक से वो देख नहीं पाएगा, वाणी से ठीक से उच्चारण भी नहीं कर पाएगा। और उसे कहो कि सत्संग चल रहा है, सत्संग में चल करके बैठो और सुनो, तो वो ठीक से सुन भी नहीं पाएगा, शब्द ग्रहण भी नहीं कर पाएगा जिसने महीनों से भोजन नहीं किया। वह का अर्थ है इन सात द्वारों के माध्यम से जो शब्दादि विषयों का ज्ञान होता है, वह ज्ञान करने के लिए इंद्रियों के यह द्वार होने चाहिए बलवान, शक्तिशाली, और इनको शक्ति मिलती है उसी अन्न रस से, और उस अन्न रस को पचाता है जाठराग्नि। इसलिए माना जाता है जाठराग्नि का भी थोड़ा सहयोग अन्न रस बनाने में होने से, और उसी से पुष्ट होकर के इंद्रियों के यह गोलक आपको अपने अपने विषयों का ज्ञान कराने में हमेशा उद्यत रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो ये कहा गया कि यह उदर्य अग्नि की सात ज्वालाओं के तरह ये ज्वालाएं हैं, अर्चिया हैं, कि तस्मात एता सप्तार्चिसो भवंती। तस्मात शब्द से लिया जाता है उदर्य अग्नि के द्वारा पचाया गया जो अन्न, और वो अन्न रस जो उदर इन गोलकों में पहुंचा है उसमें निमित्त एक जाठराग्नि भी होने के कारण जाठराग्नि की अर्ची के तरह अर्चिया ये सात है, यानी सात द्वारों के माध्यम से होने वाले विषयों के ज्ञान ये ज्वाला के तरह ज्वालाएं हैं उस जाठराग्नि के। जैसे आप लौकिक बाह्य यज्ञशाला में स्थापित आवनीय अग्नि में घृतादि डालते हो, हवन सामग्री, तो उससे वह आवनीय अग्नि प्रदीप्त होकर के उसकी अर्चिया निकलती है ना, ज्वालाएं निकलती है। ऐसे यह आपके द्वारा भुक्त अन्न से प्रदीप्त होकर के चक्षुरादि इंद्रियों के गोलक आपको रूपादि का ज्ञान करा रहे हैं, तो माना जाता है वह उदर्य अग्नि रूपी आवनीय अग्नि से निकल रही है ज्वालाएं के तरह ज्वालाएं। ये तस्माद एता सप्तार्चिसो भवंती ये कहा गया। अब ये जो अभी तक प्राण के तीन भेद बताए गए, अपान, प्राण और समान, बचे हैं व्यान और उदान, ये दो भेद और। तो व्यान का निरूपण करने के लिए व्यान का स्थान है नाड़िया, नाड़ियों में व्यान विचरण करता है, जैसे नाभि में रहा समान, श्रोत्र चक्षु में रहा ये प्राण, ऐसे व्यान नाम का जो प्राण का भेद है उसका स्थान इस शरीर में कौन सा होगा, वो नाड़िया। तो नाड़िया कहां से उत्पन्न होती है, कहां से निकलती है, कहां जाती है, इन सब का वर्णन करने के लिए ये मंत्र है छठवां। हृदि हेस आत्मा अत्र एतद एक शतम नाड़ीनाम तासाम शतम शतम एकैकस्याम द्वासप्ततिर द्वासप्तति ही प्रतिशाखा नाड़ी सहस्त्राणि भवन्ति आसु व्यानः चरति। तो ये कहा गया कि एषः आत्मा हृदि, हृदय है आपके स्थूल शरीर का ही अंदर का भाग जो कमलाकार मांसपिंड है उसे कहा जाता है हृदय, और उस हृदय का स्थान है ये यहां, जहां छाती और पेट के बीच में थोड़ा गड्ढा सा होता है ना, और वो गड्ढा होता है प्रत्येक व्यक्ति का अपने इस अंगूठे के बराबर का, वो अंगूठा उसमें आएगा, हर एक व्यक्ति का अपने अपने अंगुष्ठ परिमाण का ही वो गड्ढा होता है और वहीं पर आत्मा स्थित है। इसलिए किसी का मौन हो और पूछे कि ये फूल का गुच्छा किसने लाया और वो बोल करके तो बता नहीं सकता, तो इशारा करता है यहां पर मैंने लाया ये बताना है ऐसा। तो मैं का निर्देश करने के लिए जहां पर आपका स्वाभाविक रूप से हाथ चला जाता है वहीं पर माना जाता है हृदय का स्थान, वही वह कमलाकार मांसपिंड है और यहां पर उस हृदय शब्द से लेना है उस कमलाकार मांसपिंड से घिरा हुआ जो आकाश, उसमें थोड़ा अवकाश है उसे हृदय आकाश कहा जाता है और उस हृदय आकाश में यह आत्मा रहती है एष आत्मा। तो आत्मा से लेना यहां पर आत्मा की उपाधिभूत जो सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर से भी लेना सूक्ष्म शरीर में जो प्रधान है, सूक्ष्म शरीर तो है 17 तत्वों का, 5 कर्मेन्द्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 प्राण, मन बुद्धि, इनमें प्रधान है मन बुद्धि, बुद्धि प्रधान है और ये बुद्धि रहती कहां है, तो बुद्धि का गोलक माना जाता है हार्द आकाश को, ये जो हृदय आकाश है वहीं पर बुद्धि रहती है मन रहता है, मन का गोलक है वो, अंतःकरण का गोलक है और अंतःकरण के दो भाग है बुद्धि और मन, वो रहेगा हृदय में। इसलिए कहा गया कि रिधि एष आत्मा, और जहां अंतःकरण है तो माना जाता है अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य का नाम है जीव, वो जीवात्मा भी जहां उसकी उपाधि रहेगी वहां रहेगा। ऐसे स्वतः तो आत्मा है आकाश के तरह व्यापक सर्वत्र है, लेकिन जीवात्मा कहां है, तो जीवात्मा की उपाधि बुद्धि जहां रहेगी वहां जीवात्मा का अस्तित्व माना जाएगा। जैसे महाकाश तो सब जगह है और घटाकाश जहां घट होगा, घट से घिरे हुए आकाश को कहा जाता है घटाकाश, वो कहां है, तो जहां पर घट है वहां पर घटाकाश रहेगा। ऐसे जहां पर बुद्धि है वहां पर बुद्धि अवचिन्न चैतन्य रूप जीवात्मा रहेगा, बुद्धि से युक्त चैतन्य जिसे जीव कहा जाता है वो रहेगा। तो बुद्धि रहती है हृदय में, इसलिए आत्मा भी हृदय में है, और यहां आत्मा शब्द से लेना आत्मा की उपाधि बुद्धि मन, और वह हृदय पुंडरीक में है यानी हर्दाकाश में है। और ये मन यदि चक्षुरादि इंद्रियों तक न पहुंचे तो आपको रूपादि का ज्ञान नहीं हो पाएगा। जागृत अवस्था में इंद्रिया अपने अपने गोलकों में रहती है और उन गोलकों से वे रूपादि विषयों में जाकर के रूपादि विषयों का ग्रहण करती है, लेकिन वहां यदि चक्षुरादि के गोलकों में नेत्रादि में मन न पहुंचे तो बिना मन के इंद्रियों से ज्ञान नहीं हो पाएगा। ज्ञान का अर्थ ही होता है मन की वृत्ति, चक्षु इंद्रिय के माध्यम से जो रूपाकार मन की वृत्ति बनी उसे रूप का ज्ञान कहा जाता है, श्रोत्र इंद्रिय के माध्यम से जो शब्दाकार मन की वृत्ति बनी उसे शब्द का ज्ञान कहा जाता है। तो इसके लिए आवश्यक है मन का हृदय से चक्षुरादि इंद्रियों के गोलक में पहुंचना, आवश्यक है वहां पहुंचना। इसके लिए फिर मन तो सीधे हृदय से निकल करके चक्षुरादि इंद्रियों में उड़ करके नहीं जा सकता, उसके पंख नहीं है, तो फिर कोई ना कोई मार्ग चाहिए ना उसको वहां तक पहुंचने के लिए। तो इसी मन को विचरण करने के लिए ये नाड़ियां मार्ग के तरह मार्ग है। तो मार्ग फिर जहां मन होगा वहीं से निकलेगा ना, वहां से शुरू होगा और जहां उसे पहुंचना है वहां तक जाएगा। तो हृदय को माना जाता है नाड़ियों का उत्पत्ति स्थान। यहां हृदय की चर्चा इसलिए की जा रही है और हृदय में स्थित मन को इसलिए बताया जा रहा है कि मन से ही आपको रूपादि विषयों का ज्ञान होना है और मन का जागृत अवस्था में रूपादि विषयों के ज्ञान के साधन भूत चक्षुरादि इंद्रियां जहां रहती हैं वहां जाना जरूरी है और रूपादि विषयों को ग्रहण करके फिर हृदय में आना जरूरी है। तो आने जाने के लिए हृदय से चक्षुरादि गोलक तक पहुंचने के लिए मार्ग चाहिए, उसको रास्ता चाहिए। वो मार्ग का काम करती है नाड़ियां, वो नाड़ियां निकलती है हृदय से ही, जहां प्राण है जहां वो मन है वहीं से नाड़ियां निकलेगी। इसलिए आगे कहते हैं कि तत्र एतत् एक शतम नाड़ी नाम, तो तत्र यानी उस तत्र ने अत्र अत्र एतत् एक शतम नाड़ी नाम, तो अत्र शब्द से लिया जाता है हृदय को। ये जो मन का गोलक है हृदय, उस हृदय से संबंध है 101 नाड़ियों का। एक शतम नाड़ी नाम का मतलब 101 नाड़ियां, ये मुख्य नाड़ियां हैं, इनको मुख्य नाड़ियां कहा जाता है। कुल नाड़ियों की संख्या तो बताई जाएगी 72,72,10,201 नाड़ियां हैं, लेकिन इसमें मुख्य नाड़ी 101 है। और ये 101 नाड़ियां निकलती कहां से हैं? समुद्र में मिलने वाली नदियां जैसे अलग अलग पर्वतों से निकलती हैं, बहते हुए चली जाती हैं समुद्र में, ऐसे यह मुख्य जो नाड़ियां हैं शरीर में वे 101 हैं और ये सब की सब हृदय से संबंधित हैं। शुरुआत उनकी हृदय से होती है और हृदय से निकल करके फिर ये 101 नाड़ियां जहां जहां जानी है हृदय के शरीर के भाग में वहां वहां जाती हैं। और जाते समय ये नहीं होता है कि गंगा जी गौमुख से निकली और गंगा सागर में जाकर के गंगा सागर में मिली तो बीच में कोई नदी उसे न मिली हो। गंगा सागर और गौमुख के बीच में कितनी उपनदियां और उन उपनदियों की भी और उपनदियां आकर के गंगा जी में मिल जाती है। यमुना ही मिल रही है वहां पर, कहां? वहां प्रयागराज में, और यहां रुद्र प्रयाग में आकर के अलकनंदा और मंदाकिनी मिल रही है दोनों, फिर वो आकर के देवप्रयाग में मिल जाती है। तो गंगा जी कितनी सारी नदियों को अपने में समा करके गंगा सागर में जाकर के मिलती है। ऐसे 101 नाड़ियां तो हृदय से निकली, ये मुख्य नाड़ियां हैं और इन मुख्य नाड़ियों की उपनाड़ियां हैं प्रत्येक नाड़ियों की 100-100। 101 नाड़ियों की 100-100 हो जाएगी तो 1100 नाड़ियां वो हो जाएगी, 10,100 नाड़ियां उपनाड़ियां उनको बताया जा रहा है कि तासाम शतम शतम एक एक श्याम, तो तासाम यानी जो मुख्य 101 नाड़ियां हैं उनमें से प्रत्येक मुख्य नाड़ी की शाखा नाड़ियां हैं 100-100, तो 100 नाड़ी की 100-100 होगी तो 10,000 हो जाएगी, और एक की और 100, ऐसे 10,100 शाखा नाड़ियां हुई, प्रधान नाड़ियां हुई 101, ऐसे मुख्य नाड़ी और शाखा नाड़ी मिलकर के 10,201 हुई। और ये जो शाखा नाड़ियां हैं 10,100, इनकी फिर उपशाखा नाड़ियां हैं। उपशाखा नाड़ियां हैं कितनी, तो 10,100 नाड़ी में से हरेक नाड़ी से जुड़ी हुई उपशाखा नाड़ियां हैं 72,000। उसे बताया जा रहा है कि द्वा सप्तति ही प्रतिशाखा नाड़ी सहस्त्राणी भवन्ति। इस वाक्य से बताया गया कि 10,100 जो उपनाड़ियां हैं उनमें से हरेक उपनाड़ी की और प्रशाखा नाड़ी उसे कहा जाता है, उपनाड़ी से जुड़ी हुई नाड़ी वो हो गई प्रशाखा नाड़ी, और वो प्रशाखा नाड़ी की संख्या कितनी है 72,000। तो 10,100 से 72,000 को गुनेंगे यदि तो वो हो जाती है प्रतिशाखा नाड़ियां 72,72,00,000, और उसमें उपशाखा नाड़ी जो है उनको मिलाएंगे तो वो हो जाती है शाखा नाड़ियां कितनी 10,100, और मुख्य नाड़ियां मिला देते हैं तो वो हो जाती है 101, ऐसे 72,72,00,000 10,201 ये नाड़ियां आपके शरीर में हैं, प्रत्येक के शरीर में है, और इन ये इतनी नाड़ियां सब व्यान का स्थान है, व्यान इसमें विचरण करता है, व्यान नाम का जो प्राण का एक भेद है उसके लिए कहा गया कि आसु व्यानश्चरति। आसु यानी ये जो नाड़ियां हैं सब मुख्य नाड़ियां, शाखा नाड़ियां और उपशाखा नाड़ियां, इन सब में ये व्यान विचरण करता है, सामान्य रूप से सब में रहता है, व्याप्त होता है, इसलिए पूरे शरीर में व्याप्त होने से इसे व्यान कहते हैं। और जब इसका एक विशेष स्वरूप है व्यान का, वो रहता है प्राण और अपान की जो वृत्ति है। प्राण कहा जाता है अंदर की वायु बाहर निकल रही है मुखनाशिका से, तो प्राण जो रेचक होता है, रेचक करने वाला वो प्राण है, और अंदर बाहर की वायु अंदर जा रही है ऑक्सीजन, वो अपान की वृत्ति मानी जाती है। और इन दोनों का मध्य है जब आप बाहर का ऑक्सीजन अंदर भी नहीं ले रहे हैं और अंदर की वायु को बाहर भी नहीं कर रहे हैं, तो बीच में कुंभक होता है, कुंभक की स्थिति में मानी जाती है व्यान की वृत्ति। और ये श्वासोश्वास को रोक करके जब ज्यादा शक्ति लगा करके काम करना होता है ना, उस काम को करते समय यह व्यान वृत्ति होती है। इसलिए छांदोग्य उपनिषद में कहा कहीं दौड़ने की जो स्पर्धाएं होती हैं तो दौड़ते हैं उस समय श्वास को रोक करके दौड़ते हैं, ज्यादा जोर से दौड़ना होता है तो। ऐसे तैरते हैं या कुछ बहुत ज्यादा वजन उठाते हैं, कुछ खींचना होता है, उस समय प्राण अपान की वृत्ति रुक जाती है और बीच में वो कुंभक होता है, वो व्यान वृत्ति मानी जाती है। और वो व्यान ऐसे सामर्थ्यशाली कर्म करते समय प्रकट होता है विशेष रूप से, बाकी सामान्य रूप में इन नाड़ियों में वह विचरण करता रहता है। ये बताया गया आसु व्यानश्चरति। सप्तम कंडिका का विचार हम लोग कल करते हैं। हरिओम।